वसुदेवसुतं देवं कंसचानुरमर्दनम्
वसुदेवसुतं देवं कंसचानुरमर्दनम्
देवकी परमानं वंदे जगद्गुरु
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु
अजोऽपि सकलवे आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्
अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधुना नाशाय चतुष्कृता
परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
कर्म च मे
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः
सन्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन
नीतराघवय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता नीतराघवय क्रोधा मन्मया
परमानंदं
कृष्णं वंदे जगद्गुरु
कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय
राम
श्रीराम
जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय
राम श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठलप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् अभी वर्तमान में जो वैवस्वत मनु का राज्य है उस विषय में उनके पुत्र पौत्रादि के बारे में बता रहे थे मार्कंडेय जी। उस विषय में कल एक प्रसंग आया था, सूर्य भगवान की आराधना। वैवस्वत माने सूर्य भगवान का बेटा, विवस्वान का बेटा वैवस्वत। तो उस वैवस्वत मनु के बहुत पुत्र हुए, कई पुत्र हुए थे, सब एक एक से बढ़कर थे, सबकी बड़ी कीर्ति फैली हुई थी। तो पहले तो ये पुत्र हो गए इक्ष्वाकु वगैरह, पर उससे पहले उसके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने यज्ञ किया, ये नवम स्कंद के पहले अध्याय में भी आता है, थोड़ा फर्क है। पर यज्ञ के अंदर उनकी इच्छा थी कि मेरे लड़का हो, पर वो लड़की हो गया। उस लड़की का नाम था इला। फिर मित्रा वरुण ने यज्ञ किया और वो लड़का वापिस, लड़की वापिस लड़का सुद्युम्न हो गया। फिर वो इलाव्रत खंड में चला गया तो वहां भगवान शंकर ने उसको वापस लड़की बना दिया। तब वह बुध नाम का जो चंद्रमा का पुत्र था उसकी वो पत्नी हो गया। उससे उसके पुरुरवा नाम का लड़का पैदा हुआ। फिर वापिस यज्ञ के प्रभाव से वो लड़का होकर सुद्युम्न बन गया। आगे चलकर सुद्युम्न ने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और सुद्युम्न के तीन लड़के वे उत्कल, विनय और गए, तीन लड़के पैदा हुए। उसका एक भाई था दिष्ट, उसके पुत्र का नाम था नाभाग। नाभाग एक तो मनु का बेटा भी है और एक मनु के पोते का नाम भी नाभाग है। ये पोते की बात चल रही है, बहुत सुंदर बात है। अब चलना, नाभाग जब बड़ा हुआ तो यौवन के आरंभ में उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ गई जो बहुत सुंदर थी। नाभाग ने मन में विचार कर लिया कि मुझे इसी लड़की को प्राप्त करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वह उस लड़की के पिता के पास गया। वो वैश्य जाति की थी लड़की, तो उसके पिता के पास गया और उस पिता से कहा कि आप हमें हर कीमत पर कुछ भी हो जाए ये लड़की मैं लूंगा, प्रेम से देओ चाहे कैसे भी देओ। तो वैश्य घबरा गया कि राजकुमार है ये और ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने कहा कि देखो राजकुमार, आप लोग राजा हो और हम लोग आपके सेवक हैं, तो आपकी और मेरी बराबरी नहीं है। मैं अपनी लड़की यदि आपको दे दूं तो आपके लिए शोभा की बात नहीं है, और वैसे भी हम वैश्य हैं, आप क्षत्रिय हो, ये बात समाज के हिसाब से भी अच्छी नहीं लगती है। राजकुमार ने कहा कि देखो मुझे तो इसी के साथ विवाह करना है, मुझे इसी को ही लेना है, अब देना है तो दे दो और नहीं दोगे तो क्या पता मेरा शरीर रहे या न रहे, या फिर इसका भी शरीर रहे न रहे। वैश्य के मन में फिर घबराहट हुई। उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो, आपके पिता से आप आज्ञा ले लो, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो मां बाप से आज्ञा लिए बिना करना आपके लिए भी ठीक नहीं है, और वो हमारे भी राजा है, तो राजा होने से वो हमारे भी माता पिता है, इसलिए मैं भी निर्दोष हो जाऊंगा, आप भी निर्दोष हो जाओगे, अपने पिताजी से पूछो वो राजा है, यदि वो कह देंगे कि नहीं मेरे पुत्र के साथ तुम अपनी कन्या का विवाह कर दो तो मैं तत्काल कर दूंगा और फिर आप ले जाओ। राजकुमार ने कहा कि देखो ये तो मैं भी जानता हूं कि मेरे पिता इसके लिए कभी भी हामी भरने वाले नहीं है, और सुनो वैश्य, मैं अपने पिता से जाकर क्या ये कहूं कि मुझे ये वैश्य कन्या प्रिय लगती है, इसलिए आप मुझे इसके साथ विवाह करने की आज्ञा दो, ये अपने मुंह से मैं अपनी बात को ये अच्छी लगती है। गुरुजनों के सामने तो केवल अपनी जरूरी कोई बात है उतनी करनी चाहिए, बाकी ऐसी बातें नहीं की जाती जो उनको पसंद न हो, थोड़ी मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कहा अच्छी बात है, वो आपके पिता है तो वो और ढंग के पिता है, मेरे पिता है वो राजा होने के नाते पिता है, तो आपसे यदि चर्चा नहीं होती है अपने पिता के सामने तो मैं एक राजा के सामने जाकर चर्चा करूंगा। राजकुमार चुप हो गया कि अब क्या बोले। वैश्य चला गया उसके पिता के पास, राजकुमार के बाप के पास। राजा ये बात सुनकर के अवाक रह गया, ये क्या हो गया, मेरा लड़का, क्या उसको क्षत्रिय कन्या नहीं मिली। वैश्य ने कहा महाराज मैंने सब प्रकार से उन्हें कह दिया, अनेक युक्तियों से मैंने समझा दिया, पर राजकुमार तो किसी भी प्रकार कुछ भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि बोलो मंत्रीजनों क्या करना चाहिए। ऋषियों को भी बुलाया, ऋषि वगैरह बोले कि हे राजकुमार, तुम अपने मन की बात राजा के सामने नहीं कह सके, तुम्हारी मर्यादा थी और वैश्य ने आकर अपनी बात कही, ये इनके लिए पूछना भी उचित है। परंतु एक बात है, तुम क्षत्रिय हो और तुम एक बहुत बड़े राजा के बेटा हो, तो पहले तुम्हारा किसी राजकन्या के साथ में विवाह होना चाहिए। क्षत्रिय भी कोई हर क्षत्रिय नहीं, जो मूर्धाभिषिक्त अर्थात जिसका राज्य सिंहासन जिसको मिल चुका है, ऐसे क्षत्रिय की कोई कन्या हो, पहले उसके साथ विवाह हो जाए, फिर उसके बाद वैश्य के कन्या के साथ तुम विवाह कर सकते हो। ऐसा करने पर दोष नहीं होगा। कई प्रकार की बातें चली कि भाई फिर क्यों नहीं दोष होगा, यदि वैश्य के साथ विवाह करने में दोष नहीं मानते हैं तो पहला ही विवाह कर दो। ऋषियों ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ये आज राजकुमार है और कल ये यहां का राजा होगा, यदि इसका किसी क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त राजा के साथ विवाह, राजकन्या के साथ विवाह होगा तो उसकी संतान इसकी जगह पर बैठेगी, और यदि वैश्य कन्या के साथ में विवाह कर दोगे तो क्या इस राज सिंहासन पर वर्ण शंकर संतान सिंहासन पर बैठेगी? सब चुप हो गए और राजकुमार से कहा, देखो राजकुमार, हम लोगों की कोई तुम बात नहीं मानोगे, पिता की मन की बात नहीं मानोगे, अपने कुल की रीति नीति को नहीं मानोगे और वैश्य कन्या को तुम किसी भी उपाय से ले भी आओगे तो तुम्हारी जो उत्कृष्टता है, श्रेष्ठता है, तुम जो श्रेष्ठ जाति में हो, ये तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी। नाभाग ने कहा, कोई बात नहीं, होगा जो होगा, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं इस वैश्य कन्या के साथ में ही रहूंगा, इसी के साथ विवाह करूंगा। ऋषियों की कोई बात नहीं माने और वो वहां से नाराज होकर चला गया और घर से निकलकर हाथ में तलवार लेकर के बोला, मैंने निश्चय कर लिया है कि इस वैश्य कन्या को मैं अपहरण करके भी लाऊंगा, कैसे भी लाऊंगा लाऊंगा, और इसी के साथ जीवन व्यतीत करूंगा, आप में किसी में दम है तो आओ मेरे से युद्ध करो। वैश्य ने देखा कि अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, मैं तो लड़ सकता नहीं, वो त्राहिमाम करता हुआ राजा के पास गया और राजा ने कहा कि वो इतनी हिम्मत दिखाता है, तलवार के बल पर आपकी कन्या को ले गया है, तो तत्काल क्रोध में आकर राजा ने सेना को आज्ञा दी, उस दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, उसे मार डालो और उसके बाद ही मेरे पास लौट के आओ। राजा की आज्ञा हो गई, सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध किया, नाभाग भी अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने बहुत सी सेना का अकेले ने संहार कर दिया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार राजा को मिला तो उनके पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। राजा खुद आया, राजा आकर के अपने पुत्र के साथ युद्ध करने लगा, वो भी करने लगा। राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता बड़े बड़े चढ़े सिद्ध हो रहे थे, पिता में ज्यादा बल था। इससे पहले कि वो अपने पुत्र के सिर के ऊपर तलवार चलावे, आकाशवाणी हुई, हे महाराज गहरा विचार कीजिए, आप इस पृथ्वी के महान धर्मात्मा सम्राट हैं, आप अपने पुत्र के साथ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि राजाओं का कर्तव्य होता है बराबर वालों के साथ युद्ध किया जाए। यह आपका पुत्र अपने धर्म से गिर चुका है, अपने वर्ण की कन्या के साथ जो पुरुष विवाह न करके अपने से नीचे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है तो उस हीन जाति का तेज नष्ट हो जाता है, इसलिए इसके साथ युद्ध करने में आपकी कोई भलाई नहीं है। यदि आप इसके साथ युद्ध करेंगे तो आपका क्षत्रियत्व भी नष्ट हो सकता है, क्योंकि ये अधार्मिक है, आप इसके साथ युद्ध करने योग्य नहीं है। इसलिए आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए, यह तो अब क्षत्रिय बन चुका। राजा पुत्र के साथ युद्ध करते करते रुक गए। उस राजकुमार ने वेश्य कन्या के साथ फिर विवाह कर लिया और उसके बाद वो राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज आपके पास मैं क्षत्रिय पुत्र होकर नहीं आया हूं, एक वैश्य बनकर आया हूं, आपकी प्रजा में और प्राणियों के समान मुझे आप देखना, अब बताओ मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, जो कर्तव्य हो वो आप बता दो। राजा ने वहां तपस्वी धार्मिक लोग जो न्याय किया करते थे उनसे पूछा कि इसको क्या करना चाहिए। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि देखो वैश्य का कर्तव्य है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, तुम व्यापार कर सकते हो, कृषि खेती कर सकते हो, पशुपालन कर सकते हो, युद्ध वगैरह आप कभी तुम किसी के साथ नहीं कर सकते। उसने कहा जो आपकी आज्ञा, आज्ञा मान ली और उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था, भनंदन। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं,